दिन भर तारीख 24 जनवरी दिन गुरुवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। कामबंदी के कारण संसद में साल का शुरुआती भाषण नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप। रायबरेली में पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जुबानी हमला।
क्योंकि मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता, इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है, और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत।
मिलवाएंगे पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर के पहले सिख पीआरओ से।
पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जो रवैयों में तब्दीली है वो सिर्फ इतनी है कि उनको शायद उम्मीद एक ऐसी बन गई है कि हमारा एक बच्चा है और वो हमारे बहुत काम आ सकता है।
होंगे आपके पत्र और खेल समाचार भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक कामबंदी खत्म नहीं होती तब तक वो सालाना भाषण नहीं देंगे। अमरीकी सरकार में हुई आंशिक कामबंदी के कारण 8 लाख संघीय कर्मचारियों को 22 दिसंबर के बाद से वेतन नहीं मिला है। रूस ने चेताया है कि वेनेजुएला में बाहरी सेना द्वारा दखल देने से विध्वंसकारी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। मॉस्को ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मदुरो के प्रति समर्थन जताया है, जबकि अमरीका और अन्य कई देशों ने विपक्ष के नेता हुआ गुआदियो के देश के अंतरिम नेता के तौर पर मान्यता दी है। मादुरो ने अमरीकी राजनयिकों को वापस जाने के लिए कहा है, लेकिन अमरीका का कहना है कि उनके पास राजनयिक संबंध खत्म करने का अधिकार नहीं है। रूस ने अमरीका पर वेनेजुएला में नुकसानदेह दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और इससे न सिर्फ अराजकता पैदा होगी बल्कि खून खराबा भी हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, हम विदेशी दखल की आशंका बने होने की रिपोर्टों को लेकर चिंतित हैं। वेनेजुएला में चल रहे आंतरिक घटनाक्रम में बाहर के किसी पक्ष का दखल देना ठीक नहीं होगा, ये मान्य नहीं है और इसके नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। हम मानते हैं कि किसी संभावित कार्रवाई की बातें करना बहुत खतरनाक है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के शब्द। यूक्रेन में एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को राजद्रोह का दोषी पाया है। उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा था। यह मामला उस चिट्ठी पर आधारित है जो यानुकोविच ने साल 2014 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष होने के बाद रूसी सेना के दखल की अपील की थी। माना जाता है कि यानुकोविच अभी भी रूस में ही हैं। जज मैक्सिम टिटोव ने फैसला सुनाते हुए कहा, अभियुक्त के अपराध को स्वीकार न किए जाने के बावजूद गवाहों के बयान सुनने, विशेषज्ञों की राय, दस्तावेजों और सबूतों पर नजर डालने और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत फैसला सुनाती है कि अभियुक्त यूक्रेन की दंड संहिता की धाराओं के तहत राजद्रोह और युद्ध छेड़ने में सह अपराधी होने का दोषी है। यूक्रेन की अदालत के जज मैक्सिम टिटोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान ने पिछले साल 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। संगठन ने इसे विरोध और असहमति को दबाने की शर्मनाक कोशिश बताया है। एमनेस्टी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में छात्र, पत्रकार, महिला अधिकार कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन के नेता शामिल हैं। इनमें से कई लोगों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया था। संगठन के मुताबिक कम से कम 26 प्रदर्शनकारियों की मौतें हुई हैं, जबकि सैकड़ों को जेल या कोड़े लगाए जाने की सजा सुनाई गई। प्रदर्शन के लिए हिरासत में लिए गए 9 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ईरान में आर्थिक मंदी के कारण पिछले साल प्रदर्शन हुए थे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की संस्था प्रिंसेस टच ने कहा है कि वो चीनी टेलीकॉम कंपनी ख्वावे से किसी तरह का अनुदान नहीं लेगी।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमरीकी संसद के दोनों सदनों में अपना साल का शुरुआती भाषण तब तक नहीं देंगे जब तक कि सरकारी कामबंदी समाप्त नहीं हो जाती है। कल सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि पहले सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाना चाहिए। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को देर रात एक ट्वीट में लिखा कि वो प्रतिनिधि सभा में अपना प्रस्तावित वार्षिक संबोधन शटडाउन के खत्म होने तक टाल रहे हैं। अमरीकी संविधान के तहत राष्ट्रपति को हक हासिल है कि वो अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों को हर वर्ष स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के जरिए संबोधित करें। इस संबोधन को राष्ट्रपति द्वारा अपनी नीतियों और उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को बताने का एक जरिया भी माना जाता है। लेकिन प्रतिनिधि सभा के सभागार में रवायती तौर पर होने वाले इस संबोधन को स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी सरकारी कामकाज में आंशिक बंती के कारण राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सुरक्षा मुहैया कराने में समस्याएं हैं, इसलिए संबोधन टाल दिया जाए। ये संबोधन 29 जनवरी को होना था। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स का बहुमत है और रवायत ये रही है कि स्पीकर की दावत पर ही राष्ट्रपति सभागार में आकर भाषण देते रहे हैं। लेकिन बुधवार को ट्रंप ने अचानक एक खत लिखकर नैन्सी पेलोसी से कहा कि वो तो प्रतिनिधि सभा में ही संबोधन करेंगे। उसके जवाब में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि प्रतिनिधि सभा में इस सिलसिले में राष्ट्रपति को संबोधन की दावत की मंजूरी के लिए वोटिंग ही नहीं की जाएगी। इस तरह स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सिरे से ही ट्रंप की सिफारिश नकार दी थी। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेट्स सच सुनने को तैयार नहीं है। स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच नैन्सी पेलोसी ने इसलिए रद्द की क्योंकि नैन्सी पेलोसी सच सुनना नहीं चाहती। डेमोक्रेट सच सुनने से डरते हैं और मैं समझता हूं कि ये हमारे देश पर एक धब्बा है। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। लेकिन अब ट्वीट के जरिए ट्रंप ने यह कहा है कि वो शटडाउन खत्म होने के बाद पूरी शान और शौकत के साथ उसी प्रतिनिधि सभा के सभागार से संबोधन करेंगे जहां रवायती तौर पर अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता रहा है। करीब आधी रात को स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप की ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जी, मुझे उम्मीद है कि आप डेमोक्रेट्स के शटडाउन के खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूर करेंगे जिससे कर्मचारियों को तनख्वाह मिल सके और सरकारी कामकाज शुरू हो सके। डेमोक्रेट्स अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम भी कर रहे हैं जिसके जरिए शटडाउन खत्म किया जा सके। एक प्रस्ताव में एक ऐसी स्मार्ट वॉल के लिए $5.7 अरब की रकम देने की मंजूरी भी शामिल की गई है जिसके जरिए अमरीका और मेक्सिको की सीमा पर तकनीकी यंत्रों के जरिए सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके। डेमोक्रेट्स अब बातचीत से इस मामले को सुलझाने में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूजर्सी के एक डेमोक्रेट कांग्रेस सदस्य जॉश गॉथाइमर कहते हैं, अगर सीमा पर ऐसी कुछ जगह हैं जहां दीवार भी बनाना चाहिए तो हम इसको भी मंजूर करेंगे। हम चाहते हैं कि बातचीत करके इसको सुलझाया जाए लेकिन पहले सरकारी कामकाज शुरू किया जाए। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन जॉश गॉथाइमर के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक दीवार बनाने के लिए $5 अरब से अधिक की रकम कांग्रेस में डेमोक्रेट्स द्वारा मंजूर न किए जाने के बाद पिछले 34 दिनों से अमरीकी सरकार का आंशिक रूप से कामकाज बंद है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि दीवार सिर्फ पैसे की बर्बादी है और उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य कहते हैं कि दीवार के जरिए गैर कानूनी अप्रवासियों को और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोका जा सकेगा। इस बीच शटडाउन को खत्म करने के लिए आज सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपने अपने बिल पेश करने वाले हैं। डेमोक्रेट्स के बिल में शटडाउन को खत्म करने की बात की गई है लेकिन दीवार के लिए ट्रंप द्वारा मांगी गई रकम का जिक्र नहीं है, जबकि रिपब्लिकन्स के बिल में सीमा पर दीवार के लिए ट्रंप द्वारा मांगी गई $5.7 अरब की रकम की मंजूरी और अमरीका में मौजूद कुछ गैर कानूनी लोगों को रियायत देने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकारी कामकाज आंशिक रूप से बंद होने के कारण 800,000 से अधिक कर्मचारियों को पिछले महीने से वेतन नहीं मिला है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख करते हैं भारत का, जहां कांग्रेस पार्टी कल से एक नई ऊर्जा में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद रायबरेली और अमेठी के दो दिन के दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमलावर रहे। दौरे के दूसरे दिन रायबरेली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खास मिशन पर यूपी भेजा गया है। सुनिए रायबरेली से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
प्रियंका गांधी की कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी के तौर पर नियुक्ति के बाद से ही कांग्रेस पार्टी यूपी में उत्साहित नजर आ रही है। आज पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धारदार शब्द बाण चलाए तो उनके कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ा नजर आया।
इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता, इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है। और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत, जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी, क्रोध की भावना का चिन्ह है नरेंद्र मोदी। और 2019 में हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जा रहे हैं तो कोई रोक
नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने, रोजगार न देने और राफेल जैसे तमाम आरोपों को एक बार फिर दोहराया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रियंका गांधी को उन्होंने एक खास मकसद से पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर भेजा है।
उत्तर प्रदेश में प्रियंका और सिंधिया जी को मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, इनको मैंने एक लक्ष्य दिया है। मैंने इनसे कहा देखिए उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पे बीजेपी को हराने आए हैं, मिटाने आए हैं। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की का मैं आदर करता हूँ, मगर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जगह बनानी है।
राहुल गांधी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने तीनों जिलों में कई छोटी बड़ी सभाएं की। बुधवार को ही पार्टी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभार सौंपा। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी पहले से ही सक्रिय रहती रही हैं, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि अब पार्टी में और ऊर्जा आ गई है।
पूरे रायबरेली नहीं, पूरे देश में ऊर्जा आ गई है। इसलिए ऊर्जा आ गई क्योंकि प्रियंका जी अपने आप में स्वयं में एक ताकतवर महिला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने महिलाओं को बहुत ही करीब से देखा है और महिलाओं को ओबलाइज करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं। रायबरेली में महिलाओं को रोजगार को लेकर के समूह उन्होंने कितने चलाए और सीना होम टेक्सटाइल चलाया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया।
मैं आपसे कह रहा हूँ आप देखिएगा 2019 में कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलेगी और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है बहुत सी सीटों का इजाफा होगा, विशेष करके उत्तर प्रदेश जहां उनकी जिम्मेदारी दी गई है।
राहुल गांधी को 2 दिवसीय अपने दौरे पर अमेठी में कुछ किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा जब उनके खिलाफ वापस जाने के नारे लगाए गए। ये वो किसान थे जिनकी जमीन सम्राट साइकिल फैक्ट्री में गई है और उन्हें कथित तौर पर मुआवजा भी नहीं मिला है। समीर आत्मज मिश्र, BBC रायबरेली।
भारत प्रशासित कश्मीर में हाल में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खासी बढ़ी है। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें किसी भी चरमपंथी के मारे जाने से तकलीफ होती है। उन्होंने कश्मीर के चरमपंथियों से हथियार उठाने का रास्ता छोड़ने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक ने दावा किया है कि कश्मीर का बारामूला जिला चरमपंथ मुक्त हो चुका है। दोनों बयानों पर कश्मीर के जानकार और राजनीतिक दल क्या कहते हैं, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की ये रिपोर्ट।
कल बारामूला में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 चरमपंथियों के हवाले से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसी भी चरमपंथी को अगर मारा जाता है तो उनको तकलीफ होती है। यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब कश्मीर घाटी में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान जारी हैं। राज्यपाल मलिक ने यह भी बताया है कि जो भी नौजवान चरमपंथ के रास्ते पर चल रहे हैं वो उस रास्ते को तर्क करें और अपने घरों को वापस लौटे। उनका यह भी कहना था कि जो चरमपंथ का रास्ता छोड़कर वापस आम धारे में शामिल हो जाएंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल मलिक ने पुलिस के चरमपंथ मुखालिफ अभियानों की सराहना की है।
देखिए पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन मुझे एक भी जान अगर वो टेररिस्ट की भी जाती है तो उस पे तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं सब लोग वापस आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको कोई ऑफर करें इस तरह का रिहैबिलिटेशन का कि बच्चे वापस आ जाएं। मारना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि टेररिज्म गन में नहीं है, टेररिज्म यहाँ है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि जरूर बढ़ी है पुलिस के लिहाज, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गजब का काम किया है पिछले महीनों।
उधर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया है कि कश्मीर का बारामूला जिला चरमपंथ मुख्य जिला बन गया है, जहां अब कोई भी स्थानीय चरमपंथी सक्रिय नहीं है। पुलिस महानिदेशक ने दावा किया है कि जिला बारामूला में कल मारे गए 3 चरमपंथी जिला बारामूला के आखिरी 3 स्थानीय चरमपंथी थे। राज्यपाल मलिक के बयान पर विधायक और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने बताया कि एक तरफ राज्यपाल को चरमपंथियों को मारे जाने से तकलीफ होती है तो दूसरी तरफ वो पुलिस को चरमपंथियों को मारने पर सराहना करते हैं।
किसी भी अस्थिर पसंद के मरने से तकलीफ होती है, हम उसका खुशामदीद करते हैं, लेकिन साथ ही विरोधी प्रतिनिधि को बार बार भी देते हैं कि वो
पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के बयान पर इंजीनियर रशीद ने पूछा है कि दक्षिणी कश्मीर को लेकर भी कुछ वर्ष पहले ऐसा ही कुछ कहा जा रहा था, लेकिन अब दक्षिणी कश्मीर में इतने चरमपंथी कहां से आ गए हैं?
उसके बाद जब डीजी साहब ये दावा करते हैं कि बारामूला मिलिटेंसी से फ्री हो चुका है, हम डीजी साहब को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि एक बार चंद साल कबल पुलिस ने दावा किया था कि साउथ कश्मीर को मिलिटेंसी से फ्री करार दिया गया है।
जानकार कहते हैं कि ये अच्छी बात है अगर चरमपंथियों के मरने से किसी को तकलीफ होती है। पुलिस के पूर्व डीआईजी और लेखक अली मोहम्मद वटाली का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो चरमपंथ लीडरशिप से बात करें।
मेरी राय इसमें ये है कि ये तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, उनको दुख हुआ है, बाकी कि किसी भी इंसान को दुख होगा, मगर इसके साथ मसला हल नहीं हो रहा है कि नए लोग जो आ रहे हैं, अगर एक बैच मिलिटेंट बन रहा है दूसरा तैयार होता है उसके अंदर आने के लिए।
वटाली का ये भी कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो बुनियादी मुद्दे को हल करने की कोशिश करें। बीते साल कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में करीब 270 चरमपंथी मारे गए थे, जो बीते वर्षों में अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था। सुरक्षा अधिकारियों का कहना था कि अभी भी कश्मीर घाटी में करीब 200 से अधिक चरमपंथी सक्रिय हैं। वर्ष 2016 के बाद दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथ सफों में नई वर्दी का रुझान काफी हद तक बढ़ गया था। वर्ष 2016 में दक्षिणी कश्मीर में हिजब कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद चरमपंथी सफों में तेजी के साथ नए युवा शामिल होना शुरू हो गए थे। वर्ष 2018 में कश्मीर घाटी में चरमपंथ हिंसा से संबंधित हिंसा में करीब 500 चरमपंथी सुरक्षा बल और आम नागरिक मारे गए थे, जो बीते 10 वर्षों में कश्मीर में खून खराबे का वर्ष बताया गया। दक्षिणी कश्मीर को फिलहाल चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के जनसंपर्क अधिकारी यानी PRO हैं पवन सिंह अरोड़ा। वो ऐसे पहले सिख हैं जो पंजाब प्रांत के गवर्नर के PRO बने हैं। उनके इस पद तक पहुंचने की कहानी बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान में ननकाना साहिब में उन्होंने अपनी कहानी खुद पूरे विस्तार से हमारे सहयोगी नईम अब्बास को बताई। सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक अजीम बाप का बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई थी। उनकी इज्जत का नतीजा ये था कि मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी अपनी कोई कमाई नहीं है, मेरे वालिद साहब की इज्जत थी, वो सारी कमाई मुझे मिली। पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जो रवैयों में तब्दीली है वो सिर्फ इतनी है कि उनको शायद उम्मीद एक ऐसी बन गई है कि हमारा एक बच्चा है और वो हमारे बहुत काम आ सकता है। मेरे ज़्यादातर जो मिलना जुलना होता है वो दूसरे मजाहिब के लोगों से ही मिलना जुलना होता है। अपने मजहब के लोगों के साथ तो तभी मुलाकात होती है जब हम गुरुद्वारे में आते हैं या अपने घर में आते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अपने मज़हब के होते हैं, वरना नॉर्मल रूटीन में तो हम तमाम उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दूसरे मज़हब में ज़्यादा सबसे बड़ा मज़हब जो यहाँ पर है वो इस्लाम है, तो ज़्यादातर उनके साथ ही उठना बैठना होता है। तो मुझे तो हर जगह से हमेशा सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है और हर जगह से उम्मीद ही नज़र आती है। मैंने पर्सनली ऐसा कभी सोचा नहीं था, ना मैंने कभी इस चीज़ की उम्मीद लगाई थी। हाँ, एक ख्याल ज़रूर आया था दिल में कुछ साल पहले कि यार मैं PRO बनूंगा, लेकिन तब ये भी पता नहीं होता था कि PRO क्या होता है। तब मैं कुछ और कर रहा था और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी कि मैंने फील्ड्स चेंज करते हुए कभी कुछ किया कभी कुछ किया। ये नहीं सोचा था कि मैंने पंजाब के गवर्नर के साथ आके मैंने सर्व करने और मैंने PRO टू गवर्नर पंजाब की हैसियत से आके एक सरकारी दफ्तर में बैठना। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सब बड़े प्यार से मिलते हैं और बड़ा एक एक्साइटमेंट उनके चेहरों पर, एक ऐसी अजीब सी रोशनी होती है उनकी आंखों में जिसे देख के मैं खुद में एक प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और स्पेशली गवर्नर साहब, मुझे एक दफ़ा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे एज ए एम्प्लॉय देखा हो, वो हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह देख रहे होते हैं। मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जैसे मैंने बताया बहुत लंबा था। तो पहले मैं रेडियो पर करता था, शोज़ करता था एज एन RJ, फिर उसके बाद मैं थिएटर में आया, थिएटर में एक्टिंग करता था, तो लोग बड़े खुश होते थे, आते थे, सेल्फीज़ बनाते थे, प्यार करते थे, मिलते थे, तस्वीरें बनाते थे। तो अभी भी ऐसा है कि जब भी कोई ख़ास दिन होता है, ऑफिस में कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो मैं दस्तार ज़रूर सजा के जाता हूँ। और नॉर्मल रूटीन में तो कम ही दस्तार पहन रहा होता हूँ, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो ज़रूर दस्तार पहनता हूँ। तो उस दिन ख़ास तौर पर मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ ज़रूर सेल्फियाँ बनाते हैं, ज़रूर तस्वीरें बनाते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लिया जाए ताकि मैं रोज़ाना دستار پہنا کروں اور روزانہ ہی لوگ تصویریں کھچانے کے، کیونکہ لوگوں کو تصویریں کھچانے کا موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت زیادہ برائٹ فیوچر ہے اسپیشلی سکھ کمیونٹی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سکھ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت کم ہیں۔ تو گورنمنٹ نے جب بھی سپورٹ کیا ہے اس نے ولنریبل کمیونٹیز کو ضرور سپورٹ کیا ہے۔ تو سکھ کمیونٹی کے لیے بھی 5% ایک کوٹا مختص ہے جو مائنورٹیز کا کوٹا ہے، اس میں 5% میں سکھ بھی فال کرتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ بچے آگے آئیں گے، جتنا زیادہ تعلیم حاصل کریں گے، اتنے زیادہ مواقع ملیں گے، کیونکہ مواقع موجود ہیں۔ اب میری ہی اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں تو جب میں نے جوائن کیا تھا ڈپارٹمنٹ، تب ایک سیٹ مائنورٹی کوٹا کی تھی، 4 سیٹیں اوپن میرٹ کی تھیں پورے پنجاب سے، اور میں اوپن میرٹ پر آ گیا تھا، مائنورٹی کوٹا کی سیٹ ابھی بھی خالی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مائنورٹی کے کوٹا پر بھی آ جائے گا، کم نمبروں کے ساتھ بھی آ جائے گا، تو اسے بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ محنت کرنے کی صرف ضرورت ہے، ہمیں ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم آگے آئیں، تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا محنت کریں اور سامنے آئیں۔ جب ہم سامنے آئیں گے، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کندھوں پر کچھ چیزیں ہوں گی، ہماری بکٹ میں کوئی ہماری خصوصیات ہوں گی، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا۔ ہم نارمل ایز اے پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں، ہم ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی وہی پراؤڈ ہے، ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، ہم 14 اگست پہ جھنڈے بھی لہراتے ہیں، ہم ہر ایک پاکستان کے دن کے اوپر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں باہر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ جب آپ کو اپنے گھر میں ہی تحفظات ہونے لگیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ پہلے ہماری کمزوری یہ تھی کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے نوجوان گریجویٹڈ نہیں تھے، لیکن اب چونکہ لوگ پڑھ لکھے آگے آ رہے ہیں، تو جہاں جہاں آگے آتے ہیں حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کی ضرورت ہے، تو وہاں پر فیسلٹیز کریٹ کرتی جاتی ہیں۔ چند سال پہلے تک مائنورٹیز کا کوٹا موجود نہیں تھا، لیکن چند سال پہلے تک مائنورٹیز کے بچے گریجویٹ بھی نہیں تھے۔ میں سب پاکستانیوں کو یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر ٹالرنس، ہمارے اندر ایکسیپٹینس بڑھے گی، ہمارے اندر دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کی ہمت بڑھے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سکھ کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بلکہ نہ صرف سکھ کمیونٹی کو، تمام مائنورٹیز کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، آگے آئیں۔ تعلیم جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے۔
یہ تھے پاکستان کے پنجاب پرانت کے گورنر کے پہلے سکھ پی آر او پون سنگھ اروڑا۔ شروتاؤں، اب سمے ہے آپ کے پتروں کے بارے میں جاننے کا، جس کا آپ کو بے حد دلچسپی سے انتظار رہتا ہے۔
آپ کی رائے، میں ہوں آپ کے ساتھ اندو پانڈے، اور میرے ساتھ ہیں
نمسکار راجیش پریادرشی کی اور سے۔
تو چٹھیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ چٹھی ہے ابھے کمار نرالا کی، بگین بکسر بہار سے۔ ہمارے تمام جو پرستت کرتا ہے ان کے نام انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ 1 جنوری کو انہوں نے شبھ کامنا پتر لکھا تھا لیکن شامل نہیں ہو پایا، اور آگے ان کا کہنا ہے کہ بی بی سی ہندی سیوا کا ریڈیو پرسارن کب سے شروع ہوا ہمیں یاد نہیں آ رہا، مگر پچھلے کئی سالوں سے بی بی سی کا پرسارن سنتے ہیں اور سب کچھ انہیں بہت اچھا لگتا ہے، بس کاریکرموں کی سمے سارنی میں بدلاؤ ہوتا رہا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ 15-15 منٹ کیوں نہیں بڑھا پاتے آپ؟
نرالا جی، بی بی سی کی شروعات بھارتیہ بھاشاؤں میں پرسارن کی دوسرے وشو یدھ کے دوران ہوئی تھی، اور 1950 کے دشک میں جب بھارت کا وبھاجن ہوا تب اس کا نام بدل کر بی بی سی ہندی سیوا اور اردو سیوا کیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار ہمارے پرسارن ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے پرسارن آپ سنتے ہیں، آپ کو پسند آتے ہیں، یہ بات ہمیں پسند آئی، آپ نے لکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک کاریکرموں کے سمے میں بدلاؤ کا سوال ہے، وہ ذرا کٹھن کام ہے، کیونکہ اگر آپ بی بی سی ہندی سیوا سنتے ہوں تو اس کے ترنت بعد اردو سیوا ہوتی ہے، اس کے بعد پشتو سیوا کے کاریکرم ہوتے ہیں، تو ایک طے شیڈیول ہے، ایک پرسارن کا نیم ہے، ویوستھا ہے، اس میں بدلاؤ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس میں جوڑ دیں۔
اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس لکشمن داس شرما کا پوسٹ کارڈ ہے، منڈلانا ہریانہ سے۔ لکھتے ہیں کہ سینکوں کو ہٹائے جانے پر آدرش راٹھور کی گیان وردھک وستت جانکاری کی انہوں نے بہت اچھی لگی، جو سیریا والا پروگرام کیا تھا
جی،
دنیا جہان کی بات جی کر رہے ہیں۔ اور انڈیا بول کو بی بی سی سے نکال دیا جائے تو بی بی سی نیرس ہو جائے گا۔ سب کے لیے دھنیواد،
بہت شکریہ آپ کا پوسٹ کارڈ لکھنے کے لیے، اور یہ آپ نے ہمیں ہریانہ سے کر بھیجا لکشمن داس جی، بہت شکریہ، اور آپ کی جو تعریف ہے وہ ہم آدرش راٹھور تک ضرور پہنچا دیں گے۔
راجیش جی، ہمارے پاس ایک بہت بڑا میل آیا ہے آشوتوش کمار پانڈے کا، آرا بہار سے۔ انہوں نے کئی سارے سجھاؤ دیے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹر کب کام آئیں گے، کیونکہ 6-6 مہینہ پر کبھی کرشی تو کبھی میڈیکل پر رپورٹ آتی ہے، یا پھر کوئی بھیانک معاملہ ہو تب آ جاتی ہے۔ دوبارہ یہ پوچھتے ہیں کہ آرتھک سماچار پرستت نہیں کرتے آپ لوگ، بہت کچھ ریئر ہوا تب جا کر کے کسی سے بات چیت کے آدھار پر کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ میں یہاں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سوچیے کہ بی بی سی پر کوئی خبر دوسرے یا تیسرے دن کیوں آتی ہے۔
یہ ہمارے بہت نیمت شروتا ہیں اور بہت دھیان سے ہمارے हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, तारीफ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें से कुछ हद तक कुछ बातें सच भी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी खबरों को जब तक उसकी पूरी तस्दीक ना हो जाए, जब तक पूरी बात सामने ना आ जाए, जैसे आप ये देखें कि जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शुजा साहब ने ढेर सारे आरोप लगाए ईवीएम मशीन के बारे में और उसको कई टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया। अब उन आरोपों की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, उनकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी और हमें तब तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया उस पर नहीं आ गई। जब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आ गई तब हम उसको रिपोर्ट करने लायक स्थिति में थे, क्योंकि हमारी संपादकीय नीति बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है तो जिस पर आरोप लग रहा है जब तक हम उससे पूछ न लें, उससे सफाई न मांग लें, उसको अपनी बात कहने का मौका न दें, तब तक हम उसका प्रसारण नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि खबरें जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचाएं, लेकिन साथ ही उसमें संतुलन, सटीकता और सत्यता का पूरा ध्यान रखें।
और पहली बार हमें मेल भेजा है जावेद इकबाल ने बलूचिस्तान से, कहते हैं कि दुनिया जहान और विवेचना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आगे हमारे पास गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से लिखते हैं कि बीबीसी के मानसी दास एक जोशीले समाचार वाचिका है, अच्छा लगता है उनको सुनना, लेकिन समझ नहीं आता उनका स और श का जो उच्चारण है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि वो मानसी दास है, मानसी दास है,
उनका नाम मानसी दास है, उनके उच्चारण में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है कि वो स को श या श को स कहती हैं, लेकिन उनका उनका जो अपना नाम है वो खुद को मानसी दास कहती हैं, वो उड़ीसा की रहने वाली हैं और उनके यहाँ इस नाम का उच्चारण इसी तरह किया जाता है।
आदर्श राठौर द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान में मेक्सिको का मानवीय संकट के बारे में सुनकर दुख हुआ। गणेश प्रसाद हुजदार, हमेशा की तरह इन्होंने अपनी राय भेजी है।
बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह हमें पत्र लिखते रहिए, तारीफ भी करिए, शिकायत भी करिए, लेकिन हमसे जुड़े रहिए। तो पता बता दें चलते चलते
जी, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल आईडी,
अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपके पत्रों के साथ थे बीबीसी हिंदी सेवा के डिजिटल संपादक राजेश प्रियदर्शी और इंदु पांडे। और अब समय है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर टीवी कार्यक्रम में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में प्रशासकों की समिति ने निलंबन खत्म कर दिया है। हालांकि सीईओ अभी जांच जारी रखेंगे। इन दोनों को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच से भी स्वदेश बुला लिया गया। और अब बात महिला क्रिकेट टीम की, जहां जेमिमा रोड्रिगेज के नाबाद 81 और स्मृति मंधाना के 105 रन की शानदार पारियों के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज न्यूजीलैंड को 9 विकेट से मात दी। मैकलिन पार्क मैदान पर खेले गए इस मैच में मिली जीत से भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। एक दिन पहले ही इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की पुरुष टीमों का मैच हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत पाई थी। और वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मैच और 3 मैचों की T20 सीरीज से आराम देने का फैसला किया गया है। कोहली की अनुपस्थिति में उपकप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि बीसीसीआई ने कोहली की जगह किसी को टीम में शामिल नहीं किया है। कोहली की गैर मौजूदगी का कितना फायदा विपक्षी टीम को होगा, इस पर बात करते हुए खेल पत्रकार अयाज मेमन,
विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी करते आए हैं खास करके ओडीआई में, वो किस वन मैन आर्मी जैसे की तरह है, और खास करके जब इंडिया चेस करती है टारगेट तो उनसे बेहतर कोई नहीं है, शायद क्रिकेट के इतिहास में नहीं है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में। तो अगर वो नहीं रहे सामने वाली टीम में तो फिर न्यूजीलैंड को काफी आराम मिलेगा।
और वहीं भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और भारत के ही नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के श्रीकांत आज इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक कामबंदी खत्म नहीं होती तब तक वो अपना सालाना भाषण नहीं देंगे। रूस ने चेताया है कि वेनेजुएला में बाहरी सेना द्वारा दखल देने से विध्वंसकारी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यूक्रेन में एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को राजद्रोह का दोषी पाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान ने पिछले साल 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। संगठन ने इसे विरोध दबाने की शर्मनाक कोशिश बताया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।